दूसरा राजा अध्याय 17। दूसरा राजा अध्याय 17 में हम इसराइल के उत्तरी राज्य के पतन को देखेंगे। अध्याय 17 पद 1। यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में, आहाज जो दक्षिणी राज्य का राजा था। अध्याय 17 पद 1 और 2। एला का पुत्र होशे शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इसराइल की उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। दुर्भाग्य से इसराइल में एक भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसके बारे में ये ना कहा गया हो कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा नहीं किया। राज्य के विभाजन के बाद यरोबाम से लेकर अंत तक एक भी राजा परमेश्वर के पीछे नहीं चला। ये रोचक है कि वही हुआ जैसी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा परमेश्वर के पीछे चले या परमेश्वर से दूर हो जाए, राजा के ऊपर ही निर्भर होता है। इसलिए अशूरों ने उन पर चढ़ाई की। अध्याय 17 पद 3 और 4। उस पर अशूर के राजा शल्मनेसर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा, परंतु अशूर के राजा ने होशे को राजद्रोह की गोष्ठी कराने वाला जान लिया, क्योंकि उसने 100 नाम मिस्र के राजा के पास दूत भेजे और अशूर के राजा के पास वार्षिक भेंट भेजना छोड़ दिया। इस कारण अशूर के राजा ने उसको बंदी बनाया और बेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया। उन्होंने वो धन जिसे उन्हें अशूर के राजा को कर स्वरूप भेजना था उसे मिस्र के राजा को दे दिया कि शल्मनेसर से युद्ध करने के लिए वहां से भाड़े के सैनिक मंगवाए जाए। अध्याय 17 पद 5। तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की। उन्होंने शहर का घेराव किया और शहर को अपने कब्जे में कर लिया। होशे को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया गया और शमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। राजा होशे के 9वें वर्ष में, अध्याय 17 पद 6, होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शमरोन को ले लिया और इसराइल को अशूर में ले जाकर हला में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। यहां परमेश्वर इसराइल के विरुद्ध आरोप गिनवाता है और उन कारणों की सूची देता है जिनके कारण एक महान और शक्तिशाली इसराइल राज्य जो परमेश्वर की प्रजा कहलाता था उसका पतन हुआ। अतः परमेश्वर उन कारणों की सूची बनाता है जिनके कारण इसराइल राष्ट्र दुर्बल हुआ और बैरियों के हाथ में पड़ा। अध्याय 17 पद 7। इसका ये कारण है कि यद्यपि इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराए देवताओं का भय माना। पहला आरोप, वे निशाने से चूक गए। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख पाप किया। उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की उपासना एवं सेवा की। इसका एक कारण ये भी था कि उन्होंने अपने इतिहास को गलत समझा। उनके समझने में चूक हुई कि परमेश्वर ने उन्हें राष्ट्र बनाया। परमेश्वर के साथ संबंध रखने के कारण ही वे शक्तिशाली राष्ट्र बने। उन्हें मिस्र से निकालकर लाने वाला परमेश्वर ही था। परमेश्वर ने ही उन्हें जंगल की यात्रा में सुरक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रतिज्ञा के देश में भी उन्हें प्रवेश दिलाने वाला परमेश्वर ही था। परमेश्वर ही ने उन्हें प्रतिज्ञा का देश अधिकार में दिया और बैरियों पर विजय प्रदान की। इसके विपरीत उन्होंने पूरे इतिहास को ही अनदेखा कर दिया और अपनी महानता एवं विजय का श्रेय देवी देवताओं को देने लगे। राजा ने सोने के दो बछड़े बनाए, एक को दान और दूसरे को बेथेल में स्थापित करके कहा, ये वे ईश्वर है जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाए। इस प्रकार उन्होंने सच्चे और जीवित परमेश्वर को भुलाकर अपने हाथों से बनाए हुए देवताओं की उपासना की। मनुष्य को किसी न किसी की उपासना करना अवश्य है, ये हमारा आंतरिक स्वभाव है। मुझे किसी न किसी की उपासना करना है। मेरे भीतर एक खालीपन है जिसे मैं भरना चाहता हूं, वो है आत्मिक खालीपन, जिसे मुझे किसी न किसी चीज से भरना है। यदि मैं इसे सच्चे और जीवित परमेश्वर से नहीं भरता तो मैं इसे कूड़े कचड़े और मूर्खता की गंदगी से भरूंगा। मानववादी दर्शन शास्त्र कहता है कि आज मुझे विश्वास की छलांग लगाना है। उनका कहना है कि सत्य की पहली मंजिल निराशा है और मनुष्य निराशा में वास नहीं कर सकता है, इसलिए उसे छलांग लगाना है और ऊपर की मंजिल में जाना है जो धर्म के अनुभव की व्यर्थता की मंजिल है। आज का संसार धार्मिक अनुभवों की व्यर्थता से भरा हुआ है। मैंने इस महीने की रीडर्स डाइजेस्ट साइंटोलॉजी या आत्मज्ञान के द्वारा व्यक्तिगत मूल्य को विकसित करने का धर्म तंत्र पर एक लेख पढ़ा कि उसका आरंभ कैसे हुआ। एक लेखक था जो एक शब्द का एक पैसा प्रति शब्द लेख लिखता था। उसने सोचा कि एक पैसा प्रति शब्द लेख लिखते रहने से वो कभी धनवान नहीं बनेगा, इसलिए उसके मन ये विचार उत्पन्न हुआ कि एक नए धर्म का आरंभ करें। अतः उसने साइंटोलॉजी का विकास किया कि वो धनवान बन जाए। वो सफल हो गया क्योंकि ऐसे अनेक मूर्ख लोग हैं जो अपने मन मस्तिष्क को रॉबर्ट बनाने को और अज्ञान फैलाने वालों के ग्राहक बनने की इच्छा रखते हैं। इस महीने की रीडर्स डाइजेस्ट में साइंटोलॉजी और पृष्ठभूमिका पर वास्तव में ये एक अच्छा लेख है। वो लेख ये दर्शाने में सहायता करता है कि जब मनुष्य सच्चे और जीवित परमेश्वर का त्याग करता है तो वो जो कुछ मिल जाए उसे स्वीकार कर लेता है। वो मूर्खता में विश्वास करने लगता है, वो व्यर्थ की बातों में विश्वास करने लगता है, वो सृष्टिकर्ता से बढ़कर सृष्टि की उपासना करने लगता है, वो अपनी शारीरिक आवश्यकता और लालसाओं तथा उनकी पूर्ति की उपासना करने लगता है। इस तरह इसराइल की संतान ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उन्होंने परमेश्वर को अपने मन से निकाल दिया और उस खालीपन को उन्होंने देवी देवताओं की उपासना से भरना चाहा। वे अपने इतिहास में मान्य सच्चाई को समझने से चूक गए। वे अपनी महानता को अपने और अपने देश की उपलब्धि समझने लगे। हम शक्तिशाली लोग हैं, हम दिलेर लोग हैं, हम होशियार लोग हैं आदि। इन्हीं बातों से तो देश महान बनता है और ऐसी ही बातों से राष्ट्र मजबूत होता है। इस प्रकार वे अपनी महानता और शक्ति का श्रेय अन्य बातों को देने लगे, ना कि उस परमेश्वर को जिस पर वे आश्रित थे। परमेश्वर उस राष्ट्र का केंद्र था, इसलिए उनकी शक्ति परमेश्वर से थी, क्योंकि वे परमेश्वर की उपासना और सेवा करते थे। जब वो आधार जो किसी राष्ट्र और प्रजा को खड़े रहने में सहायता करता है, वो यदि अनैतिकता के कारण गिरने लग जाए तो तो निश्चय ही वो राष्ट्र खड़ा नहीं रह पाएगा। इसराइल राष्ट्र में नैतिकता इतनी अधिक पतित हो गई थी कि वो राष्ट्र खड़ा न रह पाया। अध्याय 17 पद 9 से 15। और इसराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के घुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले लाठे और अशेरा खड़े कर लिए और ऐसे ऊंचे स्थानों के उन जातियों की नाई जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था कि तुम ये काम ना करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यद् वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इसराइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यद् वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखाओं की नाई जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हटीले बन गए और वे उसकी विधियां और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चेतौनियां उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए। व्यर्थ बातों का पीछा करने का यही नतीजा होता है, आप संसारिक बन जाते हैं। व्यर्थता का अर्थ वास्तव में यह है कि जो कुछ है उसमें कुछ नहीं, अतः कुछ नहीं की खोज करने में आप भी व्यर्थ हो जाते हैं। ये एक रोचक बात है कि लोग आज आनंद प्राप्त करने के लिए व्यर्थता का पीछा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आज मनुष्य का लक्ष्य आनंद का है और हम सबके मन में एक धारणा है कि किस प्रकार हम आनंद प्राप्त करें। आनंद है, आप इस वाक्य को अपने लिए पूरा कर सकते हैं क्योंकि आप ही जानते हैं कि आप आनंदित कैसे होंगे, क्योंकि आप सबके मनों में आनंद की अपनी परिभाषा है, जैसे लाखों रुपए बैंक में होना चाहिए। बैंक कल बंद हो सकता है, एक नाव हो तो मुझे आनंद आएगा, किसी पर्यटन स्थल में बंगला हो तो आनंद आएगा आदि। आनंद वो अनुभव है जो परमेश्वर के साथ सही संबंधों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। शेष सब कुछ आनंद की खोज मात्र है, परंतु होता यह है कि हम अपनी इस खोज में उन बातों के पीछे लग जाते हैं जो अपने आप में व्यर्थ और रिक्त है। उनसे हमें उत्साह, खुशी, हर्ष आदि प्राप्त होता है, परंतु सदा का आनंद प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी मैं अपने कॉलेज के समय के बारे में सोचता हूं कि हम क्या क्या किया करते थे कि आनंद ले। मुझे तो उन बातों का उल्लेख करने से भी घृणा आती है। जब हम बच्चे थे और बच्चे ऐसे काम करते थे जो उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था, वे ट्रैम के रेल पर ग्रीस डाल दिया करते थे और दूर बैठकर खूब हंसते थे जब ट्रैम के पहिए खाली घूमने लगते थे और जब वो अंतिम स्टॉप पर खड़ी कर दी जाती थी, तब ये बच्चे भागकर वहां जाते और उसका तार खींच देते जिससे उसकी घंटी बजने लगती थी। इस प्रकार वे सड़क पर दौड़ते रहते और आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। बड़ा आनंद आता था। अगली रात वे फिर कोई न कोई नई तरकीब सोचते, परंतु कुछ भी 10-15 मिनट से अधिक नहीं चलता था। उनका आनंद हमेशा का नहीं होता था। संसार का पीछा खालीपन का पीछा करना है, वहां सब खालीपन है और कुछ नहीं। अध्याय 17 पद 15 में आगे लिखा है, और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम ना करना। यहां एक विषय है जिसके प्रति हमें सावधान रहना है, क्योंकि हम पर उसका दबाव बहुत अधिक है। ये विषय है संसार के सदृश बनना। आज का संसार मानववादी दर्शन शास्त्र के अधीन है, जो ये कहता है कि दुष्टता और अनुचित अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि परिशुद्ध भला या बुरा होता ही नहीं। जो कुछ है वो आपकी संस्कृति, आपकी पृष्ठभूमि, आपके निवास स्थान, आपके सामाजिक परिपेक्ष पर आधारित होता है। वे ही निर्धारित करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उदाहरण के लिए न्यू गिनी की संस्कृति है, दक्षिणी अमेरिका के आदिवासियों के नियमों या एस्किमो समाज की रीति रिवाज आदि। अतः ये किसी समाज विशेष पर निर्भर करता है कि कोई संबंध सही है या गलत। ये गलत है। जहां तक नैतिक मूल्यों की बात है, उन्हें बदला नहीं जा सकता है, वे परमेश्वर द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। परंतु इसराइल वंशियों ने ये भूल की कि उन्होंने उस देश के सामाजिक रीति रिवाजों को अपना लिया, जिसके कारण वे परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गए, और इसका परिणाम ये हुआ कि वे नाश किए गए। उस देश की महानता और शक्ति जाती रही और वे नैतिकता में दुर्बल हो गए, वे आत्मिक रूप से भी दुर्बल हो गए, और अंत में ये परिणाम निकला कि उस राष्ट्र का नाश हुआ, क्योंकि किसी राष्ट्र की शक्ति उस नैतिक आधार पर निर्भर करती है जिसके ऊपर वो राष्ट्र खड़ा रहता है। परमेश्वर ने अपने दास नबी को भेजा, उन्होंने उनकी जीवन शैली के विरुद्ध घोषणा की, परंतु उन्हें रूढ़िवादी लोग तंग विचार के, पुरानी चाल के, समय के साथ ना बदलने वाले पुराने लोग कहकर उनका तिरस्कार किया गया और उन लोगों ने उनकी ना सुनी। इस कारण उस राष्ट्र का पतन हुआ। परमेश्वर ने उन्हें छोटे छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में पराजित करके चेतावनियां दे दी। कहने का अर्थ है, मोआब जैसे छोटे से दुर्बल राष्ट्र ने उनसे विद्रोह किया और अलग हो गया। इसराइल इतना अधिक दुर्बल हो गया था कि वो मोआब को भी फिर अपने अधीन नहीं कर पाया। ये देख करके मोआब विद्रोह करके स्वतंत्र हो गया, एदोम भी विद्रोह करके अलग हो गया। ये देख अन्य छोटी छोटी जातियां भी उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर उन पर आक्रमण करने लगी। इसराइल उन पर विजय ना पा सका। ऐसी स्थिति में भी उन्हें अपनी दुर्बलता का बोध नहीं हुआ। वे शिमशोन की नाई धोखे में रहे। वो नहीं जानता था कि बाल काटने पर और परमेश्वर के सम्मुख उसकी प्रतिज्ञा टूटने पर वह दूसरे लोगों की तरह साधारण हो गया है। जब दलीला ने कहा, शिमशोन फिलिस्ती तेरे विरुद्ध आए हैं, उसने सोचा, मैं पहले की तरह अपने को झटकूंगा और उनसे छूट जाऊंगा। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया है। वो फिलिस्तियों के हाथ में पड़ गया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के बिना वो दूसरे लोगों की तरह साधारण मनुष्य था। अतः किसी राष्ट्र का पतन दुखदायी तो होता है, और विशेष करके वो राष्ट्र जो कभी शक्तिशाली था तथा महिमा से पूर्ण था। उसका विनाश देखना और असहाय खड़े रहना हृदय दुखाने वाला होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक किसी राष्ट्र में आत्मिक जागृति न आ जाए और वो परमेश्वर के निकट न आए तो उसका पतन निश्चित है। अतः परमेश्वर ने उनके विरुद्ध आरोप लगाए और अध्याय 17 पद 23 में वो उसका अंत करता है। अंत में यहोवा ने इसराइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब दास भविष्यत वक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इसराइल अपने देश से निकालकर अशूर को पहुंचाया गया, जहां वो आज के दिन तक रहता है। 721 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य अशूर के हाथों में चला गया। अशूर के राजा की ये आदत थी कि वो पराजित राष्ट्र के नागरिकों को ले जाकर अनजान स्थानों में ठहराता था, जिससे कि वे विद्रोह करने में सफल न हो। इस प्रकार वे अपने शत्रुओं को ऐसा असहाय बना देते थे कि वे फिर से एकजुट होकर विद्रोह ना करें। इसराइल के राष्ट्र के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया और वे 10 गोत्र तितर बितर हो गए। इसके बाद अशूरों ने अन्य राष्ट्रों को भी जीता और वहां के नागरिकों को लाकर समरिया जैसे अत्यधिक अनजान प्रदेश में बसा दिया, जिससे कि वे फिर उठ खड़े न हो। अध्याय 17 पद 25। जब वे वहां इसराइल के उत्तरी क्षेत्र में पहले पहल रहने लगे, तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे, जो उनको मार डालने लगे। इसलिए वे अशूर के राजा के पास आए और कहा, हम देश के देवताओं के मार्गों को नहीं समझते, सिंह और जंगली जानवर हमारे लोगों को मार रहे हैं, इसलिए किसी को भेजो जो हमें देवताओं के मार्ग सिखाए, ताकि हम उस देश में रह सके। तब राजा ने बंधुओं में से एक याजक को चुना और उसे समरिया भेज दिया। इस याजक ने समरिया में उन प्रवासियों को परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा दी। अतः यहाँ एक सुंदर वचन है जो कहता है, अध्याय 17 पद 33, वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। ओह, आज बहुत से लोगों की ऐसी ही हालत है। वे परमेश्वर का आदर करते थे, उसकी प्रतीति करते थे, जानते थे कि परमेश्वर कहाँ है, परंतु वे अपने देवताओं की सेवा भी करते थे। वे स्वीकार करते थे कि परमेश्वर है, परंतु अपने दैनिक जीवन और जीवन शैली में वे देवी देवताओं के अनुयायी थे। यीशु ने कहा, मत्ती 6:24 पद, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वास्तव में उन दिनों में शक्ति का देवता धन था। आज भी बहुत लोग प्रभु का आदर करते हैं और भय मानते हैं, तो भी वे दूसरे ईश्वर की सेवा करते हैं। ये बॉब डिलन के कहने के अनुसार है, तुम्हें किसी की सेवा करनी है, ये नहीं है जिसका आप इतना आदर करते हो, परंतु वो है जिसकी वास्तव में आप सेवा करते हो। आप किसकी सेवा करते हो? क्या आप स्वयं से रचे गए ईश्वर की सेवा करते हो, या अपनी वासना की, या अपनी लालसा की? क्या आप सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा करते हो, उसके वचन के आज्ञाकारी हो और आज्ञाओं को मानते हो? यहां एक सच्चा विरोधाभास है। वे परमेश्वर का भय मानते थे परंतु अपने देवता की सेवा करते थे।